अब हम एक नया ग्रंथ, जैसे हमारे शेड्यूल है कि अलग अलग टाइप के ग्रंथों को लें जिससे कि आपको अलग अलग तरह के विचार मिल सके। सत्यार्थ प्रकाश जो पहले हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, स्वामी दयानंद जी का लिखा हुआ, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है पर जिसका अंग्रेजी में इसको लाइट अप ट्रूथ करके ट्रांसलेशन है। सत्यार्थ प्रकाश बेसिकली जो धर्म है उसका जो सही स्वरूप है, उसमें सिर्फ हिंदू के बारे में नहीं, दुनिया में जितने तरह के भी धर्म का इंटरप्रिटेशन है, धर्म को ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, संसार के बारे में जो कुछ व्यूज हैं, उन सबको के बारे में एनालिसिस करके, खास करके जो हमारे शास्त्र के हिसाब से वेद, उपनिषद, दर्शन, जितने भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनके आधार पर सत्य और असत्य का विचार करके अलग अलग चीजों पर विचार है। आज जो हम अध्याय चुन रहे हैं वो सातवां अध्याय है, उसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, सेवेंथ चैप्टर है। इस चैप्टर में आप, उसमें दो विषय है, ईश्वर और वेद। अब ईश्वर के बारे में जितने तरह के डाउट्स हैं दुनिया में, जरूरी नहीं कि हिंदू होने के नाते, अच्छा देखिए ये ध्यान रखिए कि हर एक का जो डाउट्स होते हैं बा जो ज्ञान है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। आप जो अब्राहमिक रिलीजन है उनके जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, उनके क्वेश्चंस भी बिल्कुल अलग टाइप के होंगे, जो हमारे पल्ले भी नहीं पड़ेंगे, आंसर भी नहीं सूझेंगे। तो हमारे दूसरे टाइप के सोच होते हैं, हमारे दूसरे टाइप के कंसेप्ट होते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारा जो समझ है वो उनको बड़ा मुश्किल होता है समझने। पर ओवरऑल एक एक ह्यूमन बींग के नाते ईश्वर के विषय में जितने तरह के डाउट्स हो सकते हैं और जितने तरह के मिसपरसेप्शन या परसेप्शंस हैं, उन सबको चर्चा, उन सबका एनालिसिस किया गया है, उत्तर देने की कोशिश की गई है हमारे वेद आदि शास्त्रों के आधार पर, दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों के आधार पर। उसी तरह जो हमारा जो मूल ग्रंथ है हिंदू धर्म का स्रोत वेद, उसके बारे में भी चर्चा इस अध्याय में हम करेंगे। तो ये सत्यार्थ प्रकाश, उसका जो सेवेंथ चैप्टर है, सातवां समल्ला से हम शुरू करते हैं। स्वामी जी ने हिंदी में लिखा था, वो उसका ट्रांसलेशन है, कभी कभी ट्रांसलेशन एक्यूरेट भी इसमें नहीं है। शुरू में उन्होंने दो तीन मंत्र लिखा था, वेद के मंत्र और उसकी व्याख्याएं की थी जो ईश्वर से संबंधित है। उसके बाद उनकी जो स्टाइल है वो क्वेश्चन आंसर स्टाइल है, जैसे आपके मन में व किसी भी मन में जो विचार आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, वो उन डाउट्स को पूर्व पक्ष के रूप में, क्वेश्चन के रूप में उठाते हैं और उसका आंसर देते हैं। इस प्रसंग में मैं एक छोटी सी चीज आपसे स्पष्ट करूं, यह हमारा एक बड़ा बहुत पुरानी परंपरा रही जो आजकल लुप्त हो गई, कि जब भी कोई आचार्य, कोई ज्ञानी, कोई ऋषि मुनि ऑथर कोई विचार रखता है, उसके पास हमेशा हमारे यहां एक रूल था, एक ट्रेडिशनल रूल, कि पहले उससे उसके बारे में जितने डाउट्स से वो उसको रखता है उसको हम कहते हैं पूर्व पक्ष, फिर उसका जो आंसर देता है उसको कहते हैं उत्तर पक्ष। इवन अगर वो जिन चीजों को नहीं मानता, जो ऑथर है, जो लेखक है, जो विद्वान है, वो जिन जिन कंसेप्ट को, विचारों को नहीं मानता, उसको भी वो कोट करता है आज पूर्व पक्ष, फिर उसका वो खंडन करता है अपने लॉजिक से, जो भी उसको शास्त्र प्रमाण से, जो भी उसके पास एविडेंस से प्रमाण है उसके द्वारा वो उसको खंडन करता है, फिर उसके बारे में जो उसका व्यू पॉइंट है वो उसको रखने की कोशिश करता है। और ये हमारी हजार हजार लाख सालों की परंपरा रही है, अगर आप कभी हिंदू दर्शन के शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ी बहुत, रही है ये 500 साल से। हम बहुत ही बेशर्मी से अपने चीजों को छोड़ करके, बिल्कुल अब्राहमिक रिलीजन की तरह सिर्फ मोटी बुद्धि से, अंधश्रद्धा से मानना शुरू किया, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ गुरुओं की जैसे दीमक के वो चारों तरफ वो ठेला बन जाते हैं, तो गुरुओं के चारों तरफ वो तरफ भरमार हो गए मशरूम की तरह। और जहां कोई विचार नहीं, कोई कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, जिसको जो मिला बोला, ये हमारे हिंदू धर्म की परिपाटी नहीं है जो शास्त्र परंपरा को जानते हैं। इवन जो आधुनिक काल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जो अलग अलग आचार्य भी आए जो ऋषि कोटि के नहीं थे, जिन जो सिर्फ कमेंट्री लिखा है शास्त्रों के ऊपर, जो जिन्होंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ लिखा है, कोई मूल टेक्स्ट नहीं लिखा है, उन्होंने भी यही परंपरा अपनाई है। जो उनके पहले जो जो व्यक्ति आए, उन्होंने जो विचार रखा, वो अगर उनको पसंद नहीं है या उनके विचार से मेल नहीं खाता, तो पहले उसको वो कोट करते हैं आज पूर्व पक्ष, फिर अपना विचार के उसको उसका खंडन करने की कोशिश करते हैं, जो भी एविडेंस उनके पास मिलता है, उसके बाद फिर वो अपना विचार रखते हैं। और ये परंपरा इतनी सुंदर और इतना साइंटिफिक परंपरा हजारों हजारों लाखों सालों से चली, सिर्फ पिछले 400-500 साल से ये परंपरा टूट गई जब सो कॉल्ड गुरुओं का भरमार हो गया और उनके अंधे चेलों की भरमार हो गई। तो शास्त्र तो सब कहीं गए, पता नहीं अब तो हिंदू धर्म किस भरोसे चलता है, वो भगवान के भरोसे। भगवान तो मानते बहुत कम है हिंदू लोग, क्योंकि हम अलग अलग बाबाओं को मानने लग गए हैं, तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज है कि हम ईश्वर को भी मानना छोड़ते जा रहे हैं। अब मंदिरों में अब भगवान की मूर्ति भी कम मिलती है, अब तो बाबाओं की मूर्ति ज्यादा मिलती है। ये भी एक डेंजर हिंदू धर्म में, हम कैसे अनोइंगली या नोइंगली नास्तिक होते जा रहे हैं, ईश्वर से अपनी भक्ति को हटाकर प्राणियों में, इंसानों में, अलग अलग चीजों में लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्वामी दयानंद ने उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया, जिसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर या पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष एक क्वेश्चन है, क्योंकि ईश्वर के बारे में चर्चा है, क्या वेदों में जो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी देवताएं हैं, बहुत सारे भगवान हैं, क्या ये आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि वेदों में बहुत सारी देवताओं का कंसेप्ट है या एक ही देवता का कंसेप्ट है? नो वी डोंट, एज नो हेयर इन ऑल द फोर वेदास देयर इज अ मेंशन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स। ऑन द अदर हैंड देयर इज क्लियरली सेड इन मेनी प्लेसेस दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ये कंफ्यूजन क्यों आता है? इवन जो इनसाइड हिंदू धर्म के हैं या जो आउटसाइड है, दोनों को कंफ्यूजन है। आउटसाइड वालों को तो कंफ्यूजन होना चाहिए, पर हम सबको कंफ्यूजन है कि हमें कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं हजार हजार तरह के देवी देवताएं देखते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि हर 50 साल 100 साल में कम से कम सैकड़ों नई देवी देवताएं पैदा हो जाते हैं। घर में बच्चा पैदा होता है समझ में आता है, पर हर 50-500 साल में नई नई देवी देवताएं भी पैदा हो जाते हैं। अब इतनी सारी देवी देवताएं हो जाते हैं और सभी कहते हैं ये वैदिक है, आप कुछ भी चोरी करिए, नारी करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, सब वैदिक है, सब वैदिक धर्म। ये सच है कि वेदों में भी सैकड़ों सैकड़ों तरह की देवताओं का वर्णन है। इंद्र वो देवताएं जो आज की देवता हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हर हिंदू धर्म में यह भी एक बात रही है, अगर आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ें हिंदू धर्म की हिस्ट्री को, उसके फिलॉसफी को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगा कि हर 200-400 साल के बाद पुरानी देवताएं आउटडेटेड हो जाते हैं, उनकी जगह नई देवता ले जाते हैं। जैसे आप वेद की काल में देखेंगे तो उसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, ऐसे ऐसे देवताएं थे जिनका नाम तो आप जानते हैं, पर आजकल कहीं इनका मंदिर नहीं मिलेगा, कोई पूजा करने का नहीं मिलेगा। तो बदले, 1000-2000 बदलते गए, फिर आए विष्णु, महेश्वर, शिव जिसको आप कहते हैं, ब्रह्मा वगैरह वगैरह, फिर धीरे 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 वो साइड लाइन हुए, फिर दूसरे देवता आए, गणेश, कार्तिक, उनके बच्चे स्थान ले लिया। शिव के भक्त कम मिलेंगे, गणेश के भक्त ज्यादा मिलेंगे, उनके बच्चों ने स्थान ले लिया। फिर इनकर्नेशन आए, अवतार आए, अब मूल विष्णु गायब हो गए, मूल विष्णु के जगह उनके अवतारों ने स्थान ले लिया। फिर अब धीरे धीरे क्या हो कि वो भी हटने के लगे, अब उनके भक्तों ने स्थान ले लिया, अब राम पूजक कम हो गए, हनुमान भक्त ज्यादा हो गए, हनुमान खुद राम का भक्त था, अब राम को पूजने वाले भी कम हो गए, अब हनुमान के भक्त ज्यादा हो गए, विष्णु के भक्त अब विष्णु के जगह कृष्ण ले लिया, अब कृष्ण के जगह, अब कृष्ण का तो कोई भक्त था नहीं, अर्जुन को तो कोई पूछता नहीं, अब पता नहीं आगे क्या होगा, पर यह हुआ कि कृष्ण के जो मॉडर्न भक्त आए जो वैष्णव परंपरा में, वो सब मंदिर में पूजने लग गए, भक्ति वेदांत हो, अमुक हो, शमुक हो, स्वामी नारायण हो, अब कृष्ण के जगह उनके भक्त पूजा पाने लग गए। अब देखिए हम कैसे हमारे हम चेंज करते रहते हैं। फिर वेदों में जो अलग अलग देवताएं हैं वो क्या चीज है, व्हाट इज मीन्ट बाय द मेंशन ऑफ वेरियस देवतास इन द वेदास देन, जैसे इंद्र है, वरुण है, उषा है, वो ऐसे ऐसी देवताएं आपने नाम नहीं सुना होगा, वो पुराना आते आते बदल गए, त्वष्टा है, आदित्य है, सूर्य है, अलग अलग, एनीथिंग, तो उसके एनीथिंग हैविंग ल्यूमिनियस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड देवता, एज द अर्थ फॉर इंस्टेंस, बट इट इज नो वेयर रिगार्डेड एज गॉड और एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडोरेशन। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, और हमें बहुत सबसे ज्यादा यहां फेस करना पड़ता है जब हम अपनी बात रखते हैं, लोग आपको भी पूछते होंगे, आप जहां ऑफिस में काम करते हैं भी, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं या कहीं भी, आपको पूछते होंगे कि आपके वहां वो पोलीथेइज्म है या आपके वहां बहुत सारी देवताएं मानते हैं कि एक देवता है। बड़े मजेदार है कि जितने भी हिंदू लीडर हैं खास करके अमेरिका में, सब मानते हैं और सब बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं अगर उनको कहता है कि आप पॉलीथेइज्म में आप अलग अलग देवताएं मानते हो, ये बहस करते हैं कि नहीं हम एक ही ईश्वर मानते हैं। हर हिंदू लीडर ये साबित करने की कोशिश करता है अमेरिका के अमेरिकन मेनस्ट्रीम के साथ, पर रियलिटी में वो बहुत सारी देवताएं पूछता है, पर रियलिटी क्या है कि हम एक ईश्वर, हमारे शास्त्र ने एक ईश्वर की बात अगर की तो अलग अलग फिर इतने सारे देवी देवताएं, ये कौन है? ये जो कंफ्यूजन है, यही हमारे अंदर वो कंफ्यूजन पैदा किया है, उसी को दूर करने के लिए स्वामी जी कोशिश करते हैं। कोशिश है कि जो देवता शब्द है, अंग्रेजी में हमारे यहां ना ईश्वर के लिए हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा, देवता, बहुत सारे शब्द होते हैं, पर सभी शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग यूज है, और जब ये सारे शब्द अपने अपने मूल अर्थ को छोड़ करके मिक्स हो गए, वहीं से गड़बड़ियां शुरू हुई। फिर बहुत आप शब्दों का अर्थों को ध्यान दीजिए, फिर आपको बहुत स्पष्ट ज्ञान होगा। ईश्वर का रियल मीनिंग होता है रूलर या ओनर, जो मास्टर रूलर या ओनर, जो राज करता है, जो ओन करता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहां जो राजा लोग थे उनको भी ईश्वर कहा जाता था, दिल्लीश्वर, पाटलिपुत्रेश्वर, काशीश्वर, या जो पुराने जमाने के, क्यों? ईश्वर का मतलब सिर्फ परमात्मा नहीं, जो भी कुछ किसी के ऊपर रूल करता है वो ईश्वर है। परमात्मा भी ईश्वर है, क्योंकि समस्त संसार उसी के नीचे है, वो सबका मालिक है, सबको चलाता है, वो भी ईश्वर है। पर जरूरी नहीं, अगर आपको संस्कृत लिटरेचर में वा वेद में उपनिषद में ईश्वर शब्द है, इट इज नॉट लाइक दैट, ऑलवेज इट रेफर्स टू द गॉड। इसी तरह पर परमात्मा ईश्वर है, क्योंकि समस्त संसार का वो मालिक है, उसको परमात्मा आप कहते हो, क्योंकि परमात्मा आत्मा में हूं, आप हैं, छोटी छोटी जो जीवात्माएं हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, जो इंडिविजुअलिटी है, वो सब आत्माएं हैं, और परमात्मा वो सुप्रीम है। जैसे हम एक बॉडी में कब्जा करके बैठे, पूरे बॉडी में समाये हुए हैं, इसी तरह परमात्मा पूरे संसार में समाया हुआ, वो तो परमात्मा है।
इसी तरह एक शब्द भगवान है, तो परमात्मा भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। एक शब्द है भगवान, भगवान का अर्थ होता है जिसके पास ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब प्रॉस्परिटी। छह तरह के ऐश्वर्य हमारे शास्त्रों में बताते हैं, अनिमा गरिमा लघिमा बाद में चर्चा करेंगे। मतलब जिसके पास ज्ञान हो, यश हो, कीर्ति हो, शक्ति हो वगैरह वगैरह। अगर अंग्रेजी में भगवान का ट्रांसलेशन है, जैसे ब्रिटिश कल्चर में आज भी आप देखते हैं जो लॉर्ड्स होते हैं, इवन जो भारत में जब वो, या भारत में या कहीं भी जहां उनकी कॉलोनी होती थी, तो जो उनके वाइसरॉयज होते थे या जो कलेक्टर वगैरह टाइप के होते थे, तो उनको लॉर्ड बोला जाता था। ये यही शब्द भगवान का जो रियल ट्रांसलेशन है वो होता है लॉर्ड। जिसके पास कुछ ऐश्वर्य है, जो हमसे बड़ा है, जो एडोरेबल है। आज भी जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो जब एक दूसरे से, इवन जो उनके जब अपने टीचर्स के पास जाते हैं, वो गुरुओं को देखकर बोलते हैं भगवान प्रणमामी। तो भगवान का मतलब होता है सर। जैसे अंग्रेजी में आप किसी भी बड़े आदमी को, अपने बॉस हो, अपने टीचर हो, जो भी आपसे बड़ा है, आप उसको लीडर हो, आप उसको रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि सर। ये तो भगवान का जो संबोधन है वो सर के लिए था, जो हमारे एडोरेबल। आज भी जो पंडित लोग हैं वो अपने से बड़ों को उसी तरह संबोधन करते हैं, भगवान शब्द से हम लोग आज भी जो मिलते हैं तो करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे प्राचीन काल में जो शब्दों में देखेंगे भगवान व्यास, तो व्यास भगवान मतलब व्यास गॉड नहीं है, लॉर्ड व्यास। जैसे आज भी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, एडोरेबल है, उनके पास कुछ ऐसी ऐश्वर्य शक्ति ज्ञान यश है जो हमसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए भगवान व्यास। भगवान शंकराचार्य, शंकराचार्य कोई भी महापुरुष है उसको भगवान के साथ भी जोड़ दिया जाता था, पर ये ईश्वर भी भगवान है, क्योंकि जो शब्द आप किसी को तारीफ के लिए बोले, आफ्टर ऑल जो उसकी जो 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 सुप्रीमिटी है, जो परमता है, जो चरमता है, जो वो ईश्वर में मिलता है। आप कहेंगे अगर ये धनी है तो दुनिया में सबसे बड़ा धनी परमात्मा है, आप कहेंगे ज्ञानी है तो सर्वज्ञ परमात्मा है, तो सारे वो बड़ा सुंदर श्लोक है ना, सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रति गच्छन्ति। अब कहीं भी नमस्कार कहो आफ्टर ऑल वो तो भगवान को ही जाता है। आप कोई भी शब्द करके किसी की तारीफ करो, उसकी जो 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 सुप्रीमेसी है, जो जो परमता है, वो ईश्वर को जाता है। तो भारत भगवान भी ईश्वर है, परमात्मा है। भगवान कोई भी है, आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके लिए भगवान होते हैं। और आज भी ये प्रयोग है, तो भारत में जो ट्रेडिशनल जो पंडित लोग हैं वो आज भी इसी तरह के प्रयोग करते हैं। वो सिर्फ ईश्वर के लिए भगवान शब्द का यूज नहीं करते, किसी के लिए भी करते हैं। पर जैसे जैसे शब्दों का अर्थ लोगों को समझ में आना बंद हो गया, और जिनको समझ में आता था वो मिस्चिवियसली जानबूझ के ये अर्थ समझाने की कोशिश नहीं किया, तो फिर यहीं से मिसपरसेप्शन पैदा हुआ। तो जो भी एडोरेबल है, जो रिस्पेक्ट के लायक है, जो हमसे किसी भी मामले में बहुत ऊंचा है, हम उसको भगवान के शब्द से संबोधित करते हैं। कभी कभी लोग हमें भी पूछते हैं कि आप ये राम कृष्ण को भगवान बोलते हो तो फिर आप तो कहते हो आप मानते नहीं हो किसी तरह के अवतार वगैरह, फिर इनको भगवान। हम इनको भगवान उसी तरह मानते हैं जैसे कोई भी महान व्यक्ति जो हमारे लिए आदर्श हो, आइडियल हो, एडोरेबल हो, उसी तरह। ये नहीं कि हम उनको ईश्वर मानते हैं। ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, जो हमारे खून को जिसने बनाया, जो शरीर को बनाया, जो आपको बनाया, आपकी आंखें बनाया, पानी दिया, हवा दिया, वो ईश्वर है, परमात्मा है। कोई उसको अवतार मानता है तो कोई उसको एडोरेबल, वो तो एक अलग चैप्टर है। अगले जो सबसे कंट्रोवर्शियल शब्द है, जो सबसे ज्यादा नासमझी का शब्द है, वो है देवता। देव देवता देवी वो अलग अलग शब्द है। स्वामी जी यहां उसी चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेदों में जो सैकड़ों तरह की देवताएं हैं, देवता शब्द का रियल मीनिंग पहले भी हमने चर्चा की है बहुत प्रसंग में, अभी ये ईशोपनिषद के अंतिम मंत्र के प्रसंग में भी हमने चर्चा की थी। जो उसकी एटिमोलॉजी मिलती है निरुक्त में जो वेदांग के एक एक ग्रंथ है और व्याकरण में भी पाणिनि व्याकरण देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानी भवती वा। देव का मतलब जो चमकता है, जो देता है, दा धातु से दान दान देव बना, जो देता है, जो जो आपके लिए कुछ ऑफर करता है, सैक्रिफाइस करता है, या जो शाइन करता है, या दूसरों को जो शाइन कराता है, या महाकाश में जितने भी नक्षत्र तारे प्लैनेट्स जो जो खुद शाइन करते हैं, वो सब देवता हैं। अगर इसको आप कंडेंस करके बिल्कुल सार रूप में बताएं, जो खुद प्रकाशित होते हैं, शाइन होते हैं और दूसरों को शाइन करने में जो जो हेल्प करते हैं, वो सब देवता हैं। अब मैं शाइन करता हूं, मतलब मैं जैसा भी हूं आपके सामने हूं, अगर मैं ऐसा आपके सामने हूं तो मेरे पीछे बहुत बड़ी फौज है जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया। कितने टीचरों ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे मां बाप ने मुझे पैदा किया, खिलाया पिलाया, मुझे नौकरी दिलवाने ने मुझे पैसा दिया, मुझे मुझे किसान ने जो खाना पैदा करता है वो बाजार में मिलता है, वो आप उस किसान को देखते हैं समझते नहीं, अलग बात है, पर वो किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे तो आप भूखा मर जाएंगे, डॉलर लेकर के थोड़े ही चाटेंगे। वो डॉक्टर है मैं बीमार पड़ने पर जो मुझे ठीक करता है, नहीं तो मैं अब तक शायद जिंदा नहीं होता। वो पानी है, हवा है, पेड़ है, पौधे हैं, वो सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं, इंसेक्ट है, जिनके कारण इकोलॉजी बनता है, जिनके कारण मैं ठीक ठाक सांस ले पाता हूं, इन सबका मेरे जीवन में कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए सब मेरे लिए देवता है। इसका मतलब दुनिया में हर वस्तु अगर वो पैसिवली और एक्टिवली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, वो आपके लिए देवता है। इसीलिए हमारे यहां बहुत देवताएं, हजार हजार लाखों में भी देवता जा सकते हैं। मां भी देवता, पिता भी देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, बोलते जाइए, जितने देव बनाते जाइए। नदी, नाले, पेड़ पौधे सब हमारे लिए देवता हैं, क्योंकि सबका हम किसी का भी हमारे ऊपर कोई एहसान है, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, उन सब हमारे लिए देवता होते हैं। पर यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि देवता ईश्वर नहीं है, वो गॉड नहीं है, अंग्रेजी में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। देवता हो, भगवान हो, ईश्वर हो, परमात्मा, सब गॉड या सुप्रीम गॉड में चला जाता है, और यहीं से कंफ्यूजन होता है। जब हम पेड़ की देवता मानते हैं, गाय को देवता मानते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता है कि गाय ईश्वर है जिसने सूरज चांद बनाया, मुझे बनाया, संसार को बनाया, कोई नहीं समझता। वो जानता है, वो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है गाय दूध देती है, गोबर देता है, उसके कारण कितने फायदे होते हैं, उनके बच्चों की सेहत बनता है, उसकी सेहत बनता है, उसकी मां अगर नहीं है, दूध नहीं दे पाती है, तो ये गाय के दूध से जीवन चलता है, और सैकड़ों तरह के। और थोड़ा आप पुराने 100-200 साल पहले चले जाएं, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो आपके इकोनॉमी का मूल सोर्स गाय बैल होते थे। आपके खेतों में हल चलाने से लेकर फर्टिलाइजर के लिए उसके गोबर यूज करने से लेकर, घर में आप देखेंगे आज भी यूपी राजस्थान वगैरह कहीं भी चले जाइए, सबके गांव में, सबके घर के आंगन में वो गोबर के उपले होते हैं, वहां पेड़ पौधे नहीं है, उस उपले से ही उनका फ्यूल होता है, खाना भी उसी से बनाते हैं। अब देखिए, ऐसी गाय को हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, भाई खाना उसी से, उसी दूध उसी का, उसी के कारण से अनाज पैदा होता है, उसी के कारण से आपके फ्यूल पका, खाना पकाने का साधन पैदा होता है, जब सब कुछ उसी के कारण है तो कैसे नहीं मानेंगे। पर अगर कोई वेस्टर्न नहीं समझ पाता, वह हमारे लोगों में से कोई अंदर नहीं समझ पाता, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि जब हम देवता कहते हैं उसमें वो परमेश्वर, उस जो ईश्वर सृष्टिकर्ता का कोई झलक नहीं होता है। तो वेदों में जो सैकड़ों तरह के देवताएं हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि अलग अलग चीज को, वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं या हमारे परिवार के, समाज के एलिमेंट्स हैं, जिन जिनको हम, जिनसे हमें कुछ फायदा है, उन सबको हम देवता शब्द से कहते हैं। आपको बड़े इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, जैसे मैंने बताया वैदिक देवता पुराणों में आते आते बदल जाते हैं, और पता है वैदिक देवताओं में आप अगर पढ़ेंगे, गुस्सा भी देवता है, मन्यु देवता, ये जो पहले जमाने में, आज भी जो धान वगैरह मसाला वगैरह कूटने के लिए जो वो यूज करते थे, मुझे ओखले, वो ओखला भी देवता मिलता है, ओखले भी देवता है, डंडा भी देवता मिलता है। मतलब अलग अलग ऋषि को जिस समय जिस तरह के विचार आया, जिससे उसको लगा कि उसके लाइफ में कुछ बदलाव आया, वो उसको सब देवता बने। सो दे आर ग्रेटली मिस्टेकन टू टेक द वर्ड देवता टू मीन गॉड। सो द गॉड इज कॉल्ड महादेव, नेचुरली देवता मतलब जिसका हमारे जीवन में कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है। सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, तारे नक्षत्र मां बाप पेड़ पौधे सब देवता हैं। पर जो हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी तो कहीं से कुछ कंट्रीब्यूशन लेते हैं। हमारे माँ बाप भी किसी के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं, पेड़ भी कहीं से उपकृत होता है, सूरज तारे भी कहीं से रोशनी लेते हैं। तो हम कहते हैं वो परमात्मा है जो देवताओं के देवता, इसीलिए महादेव है। महादेव का मतलब भी यही होता है जो देवताओं का भी देवता, जो कंट्रीब्यूटर है उनका भी वो कंट्रीब्यूटर है। अगर आप उपनिषद पढ़े तो आपको मिलेगा, आप देखेंगे सूरज जहां से रोशनी लेता है, चांद जिससे शीतलता लेती है वगैरह वगैरह, उसी को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए वो परमात्मा जो समस्त संसार का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो एक है, वो अद्वितीय है, वही अद्वैत है, वो सब जगह है, वो सबका है, अकेला है, उसका कोई डिप्यूटी नहीं है, उसका कोई कोई बराबर नहीं है, उससे कोई छोटा नहीं, उससे कोई बड़ा नहीं। ये भी नहीं, ध्यान रखिए, उससे कोई छोटा भी नहीं है। कोई डेप्यूटी ईश्वर नहीं है कि भाई ईश्वर छुट्टी पर चले गए और डेप्यूटी ईश्वर ने काम संभाल लिया, सूरज की रोशनी खत्म हो रही, थोड़ा फ्यूल डाल दिया, वो सोलर सिस्टम बिगड़ रहा है तो उसको कुछ पंप दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इटर्नल है, उसका कोई डेप्यूटी की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप छुट्टी लेते हैं तो आपकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो अकेला अनंत नित्य शाश्वत है। एक बड़ा ये क्वेश्चन है, इन द वेदास देर इज मेंशन ऑफ 33 देवाज, त्रयस्त्रिंशत कोटि देवाह। ये वेदों में आता है, झूठ नहीं, ये जो आप लोग बोलते फिरते रहते हैं 33 करोड़ देवता। कोटि शब्द जो संस्कृत पढ़ते हैं उसका मतलब होता है प्रकार, टाइप। 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स, और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो हमने तो ठान ही लिया है 500,000 साल से कि जितने गलत मीनिंग वही लेंगे, अच्छे मीनिंग लेंगे ही नहीं। तो हमने 33 प्रकार की देवताओं को 33 करोड़ लिया। पर आप पूछते जाइए, आप हमारे धर्म में बड़े से बड़े आचार्य महाचार्य से लेकर मूक से मूक तक, तो 33 करोड़ तो छोड़िए, 1,00,000 देवता काउंट करके बता दो पुराणों में, जो भी बचा खुचा उनके वाहन चूहा बिल्ली सब मिलाकर भी 1 करोड़ बता दो, मुश्किल है। पर 33 करोड़ का एक्चुअली वो था कि 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार, त्रयस्त्रिंश कोटि देवा। पर सवाल है कि वही वो 33 देवता भी कैसे हैं? जब आप कहते हो ईश्वर एक है, फिर ये 33 देवता क्या मतलब है? 33 तरह के देवता। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का एक पाठ है, आपको पता है जो जो वैदिक लिटरेचर है वो चार टाइप के लिटरेचर होते हैं। एक तो संहिता जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका जो जो कर्मकांड या जो रिचुअल्स को जो एक्सप्लेन करता है, वो बहुत सारे ग्रंथ बने, उनको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद के अपने ब्राह्मण, वो जाति वाला ब्राह्मण ने ग्रंथों का नाम, जैसे गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरीय ब्राह्मण, तैतरीय, ये ग्रंथों का नाम है। एक थर्ड कैटेगरी की वैदिक लिटरेचर है जिसको हम कहते हैं आरण्यक, जो खास करके वेदों के या यज्ञों के जो जो स्पिरिचुअल साइड है उसको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण रिचुअल साइड को एक्सप्लेन करते हैं कहानियों के द्वारा, नरेशन के द्वारा, एटिमोलॉजी के द्वारा, ग्रामर के द्वारा। आरण्यक तो बेसिकली ग्रंथ जो है वो उसका जो स्पिरिचुअल साइड है उसको बताने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट पार्ट है, जो जो चौथा हिस्सा है, इसको कहते हैं उपनिषद। जो बहुत पॉपुलर है आज भी, सब कोई उपनिषद, बाकी ब्राह्मण आरण्यक वेद के बारे में तो कोई गिने चुने एक आधा भी मुश्किल से मिलेगा जानने वाला आम लोगों में, पर उपनिषद बहुत पॉपुलर है। पढ़े लिखे लोग, मोस्ट पढ़े लिखे लोग उपनिषदों के बारे में जानते हैं, अगर नहीं भी जानते नाम तो सुना है। बाकियों का तो ब्राह्मण कहते ही लोग तो जाति से ले जाते हैं, आरण्यक जंगल में पहुंच जाते हैं, पर उपनिषद नाम सुना है। वो भी उपनिषद, हर वेद के अलग अलग उपनिषद होते हैं। जैसे ईशोपनिषद की हम चर्चा कर रहे थे अभी पिछले अभी इतने दिनों से, वो यजुर्वेद के रिलेटेड है। पहले कठोपनिषद की चर्चा की थी, वो भी यजुर्वेद से रिलेटेड है। जैसे ऐतरीय उपनिषद है, वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसे अलग अलग उपनिषद अलग अलग वेद से संबंधित होते हैं। तो उसमें से एक शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, जो बहुत, उसकी जो क्वांटिटी में बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाभारत की तरह बहुत बड़ा ग्रंथ है, और बहुत विद्वानों में, ज्ञानियों में बहुत रेस्पेक्टेबल, बहुत ऑथोरिटी माना जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण वो 33 प्रकार के देवताओं को व्याख्या करता है कि वो क्या है। 8 वसु, 8 वसु, 11 एकादश रुद्र, ये नाम भी आपने सुना होगा अलग अलग कहीं ना कहीं, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, मतलब 12 आदित्याज, 11 रुद्राज, 8 वसुज, इंद्रांड प्रजापति। ये 33 प्रकार की देवताएं होती हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे अष्ट वसु क्या है। वसु का रियल मीनिंग होता है, जो संस्कृत क्लास में आते हैं उनको थोड़ा ये एडवांटेज रहेगा, वस धातु रहने के अर्थ में होता है, तो उससे वसु, वसति इति वसु, जहां रहा जा सकता है। तो संसार में जो भी चीजें पैसिवली और डायरेक्टली एक्टिवली रहने के लिए है, वो सब उनको वसु कहते हैं। और 8 तरह के वसु हैं, 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ध्यान रखिए, जब हम 5 भूत का नाम गिनाते हैं, इसमें भी बड़ा मिसपरसेप्शन है। जब हम कहते हैं पृथ्वी, तो पंच महाभूत में पृथ्वी है, तो हम सीधे धरती को, ये पृथ्वी प्लानेट है, ये भूत कैसे होगा। भूत का मतलब होता है सटल एलिमेंट, जो प्लैनेट कैसे सूरज का एलिमेंट होगा, तुम्हारे शरीर का एलिमेंट होगा। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। तो पृथ्वी का मतलब जो सॉलिड चीजें हैं, जो सॉलिडनेस है, उसी को हम पृथ्वी कहते हैं। जब पंच महाभूत की आप बात करते हैं, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स की बात करते हैं, तो वो पृथ्वी आप जो ग्रह है, वो पानी को नहीं बताते, वो धरती से कोई लेन देन नहीं है। धरती तो एक प्लैनेट है, प्लैनेट तो छोटी सी चीज है, वो कैसे किसी का एलिमेंट बनेगा। तो जो सॉलिड चीजें, आप एक इंसान है, आपके भी अंदर पृथ्वी तत्व है, जो हड्डी है, मांस है, जो सॉलिड चीजें हैं, वो पृथ्वी तत्व है। इसी तरह वाटर का मतलब जो भी लिक्विडिटी है, जो भी लिक्विडनेस जहां पर होता है, वो वाटर के नाम पर जाना जाता है। फायर मतलब जो एनर्जी है, जो जहां गर्मी है, ऊर्जा है। एयर मतलब वायु, जितने तरह के आपके गैस हैं, जो हवा के जितने तरह के रूप हो सकते हैं, वो सब एयर में गिने जाते हैं। और ईथर का मतलब स्पेस, ये चारों जहां नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्पेस। स्पेस इज नॉट वैक्यूम, ऑलवेज रिमेंबर, जिसको आप वैक्यूम कहते हैं, देयर इज नथिंग व्हिच इज वैक्यूम। जिसको वैक्यूम खाली कहते हैं, वो भी एनर्जी से भरा हुआ होता है, मॉडर्न फिजिक्स आजकल साबित करता है। स्पेस, ये 5 तरह के महाभूत है, जो रहने की जगह बनाते हैं, वो सोलर सिस्टम हो, वो यूनिवर्स हो, वो सन हो, प्लैनेट कुछ भी हो, ये 5 वसु है। मून का मतलब आपकी चंद्रमा नहीं, चंद्रमा प्राचीन काल में, चंद्रमा का मतलब कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी उपग्रह है, किसी भी प्लैनेट का जो छोटे उपग्रह होता है, उसी को हम कहते हैं। और सन मतलब जो भी आपके सोलर सिस्टम वगैरह है, स्टार्स। तो ये सारे रहने के जगह हैं, इसलिए इनको वसु कहते हैं। ये 8 वसु हैं, दोबारा याद रखें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्राणी, ये 8 वसु हैं। और एकादश रुद्र की बात हम अगले शायद तक आएगा, तब भी थोड़ी बहुत 2-3 मिनट और लेकर के करते हैं। रुद्र शब्द, आजकल तो रुद्र शब्द से हम शिव को लेते हैं, शंकर को लेते हैं, पर उसकी वैदिक व्याख्या को भी ध्यान दीजिएगा। रुद्र का मतलब होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और जो पुराण की जो शिव की कल्पना है, जो पौराणिक शिव की कल्पना और वैदिक जो रुद्र है, उन दोनों के रिलेशनशिप को भी आप समझ पाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। रुद्र शब्द का मतलब होता है रोदयति इति रुद्र, जो संस्कृत क्लास में आते हैं वो समझेंगे। रुद्र मतलब रोना, रोदयति मतलब जो रुलाता है, क्योंकि ये रुलाता है इसीलिए रुद्र है। तो कहते हैं रुलाने वाले 11 चीजें हैं, देर आर 11 टाइप्स ऑफ कॉजेस जो हमें रुलाते हैं। जो असलियत पर आने से पहले आज के जो शिव या शंकर को हम रुद्र कहते हैं, क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। जब हमने एक ईश्वर को पुराणों में तीन भाग में बांटने की कोई माइथोलॉजी में उसको तीन देवता के रूप में देखा, इवन जो ओम में जो आओ मा ईश्वर के तीन अलग अलग गुणों को डिस्क्राइब करते थे माइथोलॉजी में, पुराणों में आते आते हमने वो एक ईश्वर को तीन अलग जिम्मा दे दिया, तीन अलग अलग ईश्वर की भगवान की कल्पना की कि ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु सस्टेनर है, महेश्वर डिस्ट्रॉयर है, श्रृंगार करता है। एक्चुअली ये जो जो, जो मूल वैदिक कंसेप्ट में तो एक ही ईश्वर सब कुछ करता है, पर पुराण की कहानियों में तीनों अलग अलग देवताओं की हमने कल्पना की। उसमें जो शिव की भूमिका है वो क्या है, आपके डिस्ट्रॉयर विनाश करता है। नेचुरली जब आपके विनाश होगा तब रोएंगे। तो शिव रुलाने वाला है इसलिए रुद्र है, रुलाने वाला इसलिए नहीं कि आपको कष्ट देता है, इसीलिए कि क्योंकि जहां भी मौत का संबंध होता है वहां रोना होता है। और जो वेदों में जो एकादश रुद्र कहा वो किसको कहा, 10 प्राण और एक आत्मा, 10 तरह के प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये पंच प्राण है। और उनके जो जो, जो सबोर्डिनेट जो उनके डेप्यूटी प्राणाज है वो भी 5 है, मतलब जो ये तो 5 मुख्य प्राण है जिसको आप कहते हैं नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इनको इसीलिए, और आत्मा, ये 11 रुद्र हैं, इनको इसीलिए रुद्र कहा जाता है क्योंकि जब ये शरीर से निकलते हैं तब सारा खानदान रोता रहता है, इसीलिए इनको रुद्र कहते हैं। पर जो समझने लायक है ये पंच प्राण, जो पंच प्राणों के जो 5 और डिप्यूटी प्राणाज हैं ये क्या चीजें, हम अगले रविवार को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है तो मैं यही इस बात को विराम देता हूं। फिर आगे हम समझेंगे ये 10 प्राण क्या क्या शरीर में कैसे फंक्शन करते हैं, फिर ये आदित्य क्या है, इंद्र क्या है, प्रजापति क्या है, इन चीजों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा, अगली इस रविवार को चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना, ये एक सुंदर व्याख्यानों की कड़ी चलेगी। बहुत सारे आपको आपके जो डाउट्स हैं, जो मिसपरसेप्शंस हैं, वो आपके क्लियर होंगे, और खास करके वेद से जो जो हमारा जो एक क्रोनोलॉजी रहा वेद से लेकर पुराण और मॉडर्न हिंदुइज्म तक, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगी, जिसके बाद आप सही जानकारी लें तो आप अच्छा, आपको भी अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो ये एक अच्छा सुंदर व्याख्यान का विषय रहेगा कुछ दिनों तक, आप लोग जरूर आइए सुनिए। अगर आपको कोई प्रश्न है आपके दिल में भी, मेरे व्याख्यान के कारण प्रश्न कोई डाउट्स पैदा हुआ है वैसे ही, तो आप मुझे लिख करके कागज में दे सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे प्रवचन के माध्यम से उसको समाधान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति।